ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। नेकपा एमाले के समर्थन में नेपाली कांग्रेस के केदार कार्की बने कोशी प्रदेश के मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा मुख्यमंत्री कार्की को विश्वास मत देगा गठबंधन। सिर्फ आम लोगों पर कानून लागू होने की स्थिति का अंत हो चुका है, संचार मंत्री रेखा शर्मा का कथन। घर घर में घट स्थापना के साथ कल से होगा दशहरा शुरू। और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बंदूकधारियों ने 6 निर्माण श्रमिकों की कर दी हत्या। अब समाचार विस्तार से। कोशी प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर नेपाली कांग्रेस के केदार कार्की नियुक्त हुए हैं। नेकपा एमाले के 39 और नेपाली कांग्रेस के शेखर कोइराला समूह के 8 समेत 47 प्रदेश सभा सदस्यों के आज प्रदेश प्रमुख कार्यालय में उपस्थित होकर समर्थन में शिनाख्त देने के बाद प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुंग ने कार्की को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया। नवनियुक्त मुख्यमंत्री कार्की कल पद तथा गोपनीयता का शपथ ग्रहण करेंगे, ये जानकारी प्रदेश प्रमुख कार्यालय ने दी। अब से 30 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री कार्की को कोशी प्रदेश सभा में विश्वास मत लेना होगा। मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने के बाद कार्की ने संचार मंत्रियों के साथ बातचीत में कहा कि कोशी प्रदेश में मध्यावधि चुनाव को रोकने के लिए नेकपा एमाले के समर्थन में सरकार गठित हुई है। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि कोशी प्रदेश के मुख्यमंत्री नेपाली कांग्रेस के केदार कार्की को गठबंधन विश्वास मत देगा। आज भरतपुर विमानस्थल पर पत्रकारों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि कोशी प्रदेश के मुख्यमंत्री गठबंधन के भी मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन को किसी भी हालत में कमजोर नहीं होने देंगे। हर साल अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से शुरू होकर अमावस्या के दिन समाप्त होने वाला पितृपक्ष आज सम्पन्न हुआ। सनातन मान्यता के मुताबिक यज्ञ आदि देव कार्य करने से पहले पितृ को श्रद्धा भक्ति के साथ स्मरण करने की परंपरा के अनुसार पितृपक्ष में पितरों का पार्वण श्राद्ध किया जाता है। पितृपक्ष की समाप्ति के साथ ही दुर्गा पक्ष यानी दशहरा कल से शुरू होगा। दशहरे के पहले दिन यानी अश्विन शुक्ल प्रतिपदा को हिन्दू धर्मावलंबियों के घर घर में यथाविधि घट स्थापना की जाती है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा ने कहा कि मौजूदा गणतांत्रिक शासन व्यवस्था में गलती करने की छूट किसी को नहीं है। आज दांग के तुलसीपुर वार्ड नंबर 19 में नेकपा माओवादी केंद्र द्वारा आयोजित अगुआ कार्यकर्ता भेंटघाट कार्यक्रम में मंत्री शर्मा ने ये बात कही। उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ आम लोगों पर ही कानून लागू होने की स्थिति का अंत हो चुका है। इस बात का जिक्र करते हुए कि कल पद पर रहते हुए गलती करने वाले आज कानून के दायरे में हैं, मंत्री शर्मा ने कहा कि आज पद पर रहकर गलती करने वाला चाहे जो भी हो, कल उसे कानूनी कार्रवाई भोगनी होगी। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा कि उनकी पार्टी ने लोकतंत्र के जरिए ही समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली की राष्ट्रीय आकांक्षा को पूरा करने की जिम्मेदारी ली है। आज एशियाई राजनीतिक दलों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आईकैप के 40वीं स्थायी कमेटी और एशिया यूरोप पॉलिटिकल फोरम की 5वीं वार्षिक बैठक में अध्यक्ष ओली ने कहा कि राजनीतिक दलों को अपनी संकुचित भावना से उठकर मानव हितों के लिए काम करना चाहिए। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा ने कहा कि विकास निर्माण के कामों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज पर्वत की मोदी गांवपालिका वार्ड नंबर 2 देवपुर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि तीनों तहों की सरकारों के बीच समन्वय और सहकार्य होने के बाद ही समृद्ध देश बन सकता है। कृषि तथा पशुपंछी मंत्री डॉ विदुराम भूषाल ने कहा कि सिंचाई की समस्या के दीर्घकालीन समाधान के लिए पूर्व पश्चिम सिंचाई का विकास करना जरूरी है। आज जनकपुर धाम में समाजवादी प्रेस संगठन धनुषा द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री डॉ भूषाल ने कहा कि सिंचाई के अभाव के कारण मध्य प्रदेश की कृषि योग्य जमीन बंजर होती जा रही है और जिन खेतों में खेती की जा रही है उन खेतों में भी पानी के अभाव के कारण धान सूखने लगा है। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री अशोक कुमार राय ने शैक्षिक क्षेत्र के विकास के लिए निवेश बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। आज काठमांडू के शिवपुरी माध्यमिक विद्यालय की हीरक जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह में मंत्री राय ने कहा कि सरकार ने उपलब्ध स्रोत साधनों की सीमा में रहकर हर संभव कोशिश कर शिक्षा में निवेश को बढ़ाया है। पिछले 3 महीने में मनांग एयर के 2 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने मनांग एयर कंपनी का एओसी यानी एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट निलंबित कर दिया है। प्राधिकरण के सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुल के मुताबिक मनांग एयर ने उड़ान सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए 3 महीने के लिए उसके एओसी को निलंबित किया गया है। बता दें कि आज सुबह सोलोखुम्बू के लुकला से लोबुचे के लिए उड़ा हेलीकॉप्टर खुम्बू पासांग लामू गांवपालिका वार्ड नंबर 4 में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना में घायल हुए पायलट प्रकाश कुमार चढ़ाई का इलाज काठमांडू के हेम्स अस्पताल में चल रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में शुक्रवार रात बंदूकधारियों ने 6 निर्माण श्रमिकों की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि बंदूकधारियों ने राजधानी क्वेटा से लगभग 606 किलोमीटर दक्षिण तुर्बत शहर में 8 निर्माण श्रमिकों पर रात में गोलीबारी की। 6 श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधिकारी हिदायतुल्ला दश्ती ने कहा कि श्रमिक शहर में बन रहे एक निजी निर्माण परियोजना का हिस्सा थे। किसी भी समूह ने अभी तक हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। लगभग 2 दशकों से बलूचिस्तान स्वतंत्रता की मांग करने वाले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और अन्य अलगाववादी समूहों के विद्रोह का स्थल रहा है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि हथियारबंद लोग उस घर में घुस गए जहां मजदूर रह रहे थे और अंधाधुंध गोलीबारी की, जिससे उनमें से 6 की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि मजदूर बलूचिस्तान से बाहर के थे और शहर में एक निजी निर्माण परियोजना में काम कर रहे थे। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेकपा एमाले के समर्थन में नेपाली कांग्रेस के केदार कार्की बने कोशी प्रदेश के मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा मुख्यमंत्री कार्की को विश्वास मत देगा गठबंधन। सिर्फ आम लोगों पर ही कानून लागू होने की स्थिति का अंत हो चुका है संचार मंत्री रेखा शर्मा का कथन। घर घर में घटस्थापना के साथ कल से होगा दशहरा शुरू। और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बंदूकधारियों ने 6 निर्माण श्रमिकों की कर दी हत्या। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।